पूर्व पाठ में मीमांसकों के द्वारा जो कारण का लक्षण बताया गया था उसका खंडन किया है तर्क भाषाकार ने। मैंने भी लास्ट लास्ट में बहुत ही संक्षेप में उसको बताया। आज पाठ की शुरुआत उसी की चर्चा से करेंगे, लेकिन वो मीमांसक के लक्षण को समझने से पहले थोड़ा सा हमें समझना है और कॉपी कलम सामने रखना है। आप एक चीज लिख लीजिए जो मैं लिखाता हूँ, तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वयः, तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वयः। अब दूसरा लिखिए, तदभावे तत् अभावे, वो संधि होने पर ना तदभावे हो जाएगा, तदभावे तदभावः, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः। मैंने अभी जो लिखाया उसमें ये है कि अन्वय किसे कहते हैं और व्यतिरेक किसे कहते हैं। तो अन्वय कहते हैं किसे, तो तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वे माने तस्य सत्वे, और तत्सत्वम माने तस्य सत्वम, माने उसके रहने पर उसका सत्व रहता है, यह अन्वय कहलाता है। और तदभावे तदभाव, उसके तस्य अभावे तस्य अभाव, उसके अभाव में उसका अभाव होता है, यह व्यतिरेक कहलाता है। फिर से सुनना है, तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वयः, माने उसके रहने पर उसका रहना होता है, उसके सत्व में उसका सत्व होता है एक, और तद यह अन्वय हुआ, तदभावे तदभाव माने उसके अभाव में उसका अभाव होता है, यह व्यतिरेक होता है। ऐसे अन्वय शब्द का अर्थ यहाँ पर लेना है भाव, और व्यतिरेक का अर्थ लेना है अभाव। तो अन्वय माने भाव और व्यतिरेक माने अभाव। तो मीमांसकों ने कहा है कि कौन सा कारण जो है, कारण है, इसका निर्णय अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर किया जाना चाहिए, माने जिसके जिस कारण के होने पर कार्य हो और जिस कारण के न रहने पर कार्य न हो उसी को कारण माना जाना चाहिए। अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर कारण का निर्णय करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस कारण के रहने से कार्य हो और जिस कारण के न रहने से कार्य न हो उसी को कारण मानना चाहिए, ठीक है। तो अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर कारण का निर्णय किया जाता है, यही बात मीमांसकों ने बताई है, जो ग्रंथकार ग्रंथ में लिखा हुआ, यत्तु कश्चित आह, आह माने कहते हैं, कश्चित माने मीमांसक। तो जो मीमांसक कहते हैं कि कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, कार्य अनुकृत का मैंने बताया था कि कार्य के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक का जिसमें अनुकरण किया जाए, कार्य के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक का जिसमें अनुकरण किया जाए वही कारण कहलाता है। यहाँ अनुकरण का अर्थ ना नकल नहीं करना है, अनुकरण माने ज्ञान कह सकते हैं, कि कार्य के आधार पर जिसमें अन्वय और व्यतिरेक का ज्ञान हो वह कारण है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल निष्कर्ष रूप में बता रहा हूँ कि कार्य के आधार पर जिसमें अन्वय और व्यतिरेक का ज्ञान हो वह कारण है। तो यह लक्षण जो है मीमांसकों ने बताया, और ये मोटा मोटी सही लक्षण लग रहा है, क्योंकि कारण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो जिस के रहने पर कार्य हो और जिसके रहने पर कार्य न हो वही कारण होता है, ये बात तय है, सब लोग इस चीज़ को मानते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन शास्त्र की दृष्टि में, न्याय शास्त्र की दृष्टि में वस्तुतः यह लक्षण जो है कारण का सही नहीं है, इसलिए लिखते हैं आगे तत् अयुक्तम। यह जो मीमांसक का लक्षण है यह अयुक्त है, युक्ति युक्त नहीं, अयुक्त माने युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति के आधार पर सही नहीं है। इसमें हेतु दिया कि क्यों सही नहीं है, तो नित्य विभू नाम व्योमादी नाम काल तो देश तश्च व्यतिरेक असंभवे न अकारणत्व प्रसंगात। ऐसा है कि व्योम आदि जो है, व्योम का अर्थ मैंने बताया था आकाश, और आदि से काल को ले लें, दिक् आत्मा और ईश्वर, ये पांच जो है ना व्योम आदि कहलाते हैं, आकाश काल दिक् आत्मा और ईश्वर, ये पांचों जो है ना, इन पांचों को कारण माना गया है न्याय दर्शन में, ठीक है। अब ये जो पांचों हैं ये कैसे हैं, तो नित्य हैं और विभू हैं। नित्य कहते हैं जो सार्वकालिक सत्य हो, तीनों ही काल में रहने वाला हो, भूत भविष्य और वर्तमान में, उसे नित्य कहते हैं। और विभू कहते हैं व्यापक को, जो हर जगह हो, कोई ऐसी छोटी सी छोटी भी जगह नहीं है जहाँ पर कि वो न हो, हर जगह जो हो उसे हम विभू कहते हैं। तो ये जो व्योमादि पांच हैं, आकाश काल दिक् आत्मा और ईश्वर, ये तीनों जो हैं हर एक काल में रहते हैं और हर एक देश में रहते हैं, तो कभी भी इसका व्यतिरेक जो है ना हो ही नहीं पाएगा, हमेशा अन्वय ही होगा, व्यतिरेक नहीं होगा। व्यतिरेक फिर से बता दूं, अन्वय मतलब भाव और व्यतिरेक मतलब अभाव। तो मीमांस तो इसमें व्यतिरेक हो नहीं पाएगा, तो व्यतिरेक अगर नहीं होगा तो मीमांसक का अगर लक्षण स्वीकार करते हैं कारण का, तो ये पांचों कारण नहीं कहला पाएंगे, क्योंकि कारण कहलाने के लिए शर्त है मीमांसकों का कि जो अन्वयी हो और जो व्यतिरेकी हो वह कारण है। तो ये नित्य विभू जो व्योम आदि पांच हैं, उन पांचों में अन्वय तो होगा, माने इनका भाव तो रहेगा किंतु व्यतिरेक नहीं होगा, तो व्यतिरेका असंभवे न, व्यतिरेक असंभव होने के कारण अकारणत्व प्रसंगात, इसको जो हम लोग कारण मानते हैं वह कारण नहीं होकर के अकारण का इसमें प्रसंग आ जाएगा, मतलब ये कारण संभव नहीं हो पाएगा, जबकि इसको कारण माना जाता है। तो इस तरह से मीमांसकों का जो लक्षण था कि कार्य के द्वारा जिसमें अन्वय और व्यतिरेक का ज्ञान हो वह कारण है, वह लक्षण न्याय दर्शन में मान्य नहीं है, क्योंकि नित्य और विभू जो व्योम आदि पांच हैं, उन पांचों का प्रत्येक काल में और प्रत्येक देश में जो है केवल अन्वय ही होता है, केवल भाव ही होता है, व्यतिरेक नहीं होता, मतलब अभाव नहीं होता। तो इस आधार पर यह कारण है किंतु वह अकारण हो जाएगा, इसलिए ये लक्षण सही नहीं है। इस तरह से ये तो पिछले पाठ का स्पष्टीकरण मैंने अभी दिया, अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। आगे आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है, आप देखें कि तच्च कारणम त्रिविधम, इस तरह का जो कारण है वह त्रिविधम, तीन प्रकार का होता है। तच्च कारण माने वह जो कारण है, कौन सा कारण है, तो कारण का जो न्याय दर्शन का लक्षण है उसमें तीन चीजें बताई गई थी ना, कि जो अनन्यथा सिद्ध हो, जो नियत हो और जो पूर्वभावी हो, पूर्ववर्ती हो, वह कारण कहलाता है। तो इस तरह से यह जो कारण का जो लक्षण है या लक्षण जिसमें जाता हो उसी को कहते हैं तच्च कारणम, वह जो कारण है वह त्रिविधम, तीन प्रकार का होता है। वह कौन कौन सा तीन प्रकार है, तो बताते हैं समवायी असमवायी निमित्त भेदा, माने समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये तीन प्रकार के कारण होते हैं। तो इसमें ये जो समवायी कारण असमवायी कारण कह रहा हूँ ना, इसमें छोटी ई की मात्रा है, समवायी कारण, बड़ी ई की मात्रा नहीं है। तो समवायी कारण असमवायी कारण और निमित्त कारण के भेद से यह जो कारण है यह तीन प्रकार का होता है। अब आपको इन तीनों कारणों के का विवेचन बताया जाएगा कि ये समवायी कारण क्या है, असमवायी कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है। तो सबसे पहले समवायि कारण को बताया जा रहा है कि ये समवायि कारण किसे कहते हैं। तत्र यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत समवायि कारणम। आप एक चीज जान लीजिए कि कार्य जो उत्पन्न होता है वह कार्य किसमें उत्पन्न होता है, कारण में उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लीजिए कि घर आ कार्य है, घट कार्य है और उसका कारण है मिट्टी, तो घरा किस में उत्पन्न होगा, मिट्टी में उत्पन्न होगा, अपने कारण में ही जो है कार्य उत्पन्न होता है। अब जैसे भात है वह कार्य है और उसका कारण है चावल, तो भात किस में उत्पन्न होता है, अपने कारण चावल में उत्पन्न होता है। तो ये एक सामान्य सिद्धांत है कि कार्य अपने कारण में उत्पन्न होता है। तो यहाँ की पंक्ति को देखते हैं कि तत्र यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत समवायि कारणम। इसका मतलब हुआ कि जिस कारण में कार्य यत समवेतम, यत समवेतम में ना यत का अर्थ यस्मिन कर लेना है, माने यस्मिन समवेतम कार्यम उत्पद्यते, माने यस्मिन कारणे समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत समवायि कारणम, माने जिस कारण में समवेत कार्य उत्पन्न होता है वह समवायि कारण होता है। फिर से सुनिए, जिस कारण में समवेत कार्य उत्पन्न होता है वह समवायि कारण होता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आपने सुना, समवेत कार्य। ये समवेत कार्य तो आप जानते हैं, जो उत्पन्न होने वाला है वह कार्य है और जो उत्पादक है वह कारण है, लेकिन ये समवेत क्या है? तो समवेत का मतलब है कि समवाय संबंध से उत्पन्न जो होगा ना उसे समवेत कहते हैं। अनेक तरह के संबंध होते हैं, उसमें एक संबंध होता है समवाय संबंध। यह समवाय संबंध जो है ना यह नित्य संबंध है, ठीक है। तो अगर कारण में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होवे तो वह कारण समवायी कारण कहलाता है। इसी बात को इन्होंने पंक्ति में बोला कि यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत समवायी कारणम, माने जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण कहलाता है। उदाहरण में बताया, यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम। तंतु का मतलब होता है सूत और पट का अर्थ होता है वस्त्र, तो वस्त्र का जो है तंतु समवायी कारण होता है। क्यों क्यों होता है समवायी कारण? क्योंकि पट रूपी जो कार्य है वह तंतु रूपी कारण में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो यही तो लक्षण बताया इन्होंने समवायी कारण का, कि जहाँ पर कार्य कारण में समवाय संबंध से उत्पन्न हो वह समवायी कारण कहलाता है। जैसे पट रूपी जो कार्य है वह तंतु रूपी कारण में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए तंतु जो है वह पट का समवायी कारण है। वही का यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम। यही चीज यहाँ आगे कहते हैं कि यतः, यतः माने यस्मात् कारणात्, माने जिस कारण से तंतुषु एव पटः समवेतो जायते, तंतुओं में ही सूतों में ही जो है पट समवेत उत्पन्न होता है, माने समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसीलिए तंतु समवायी कारण है। न तुरी आदिषु, ये जो वस्त्र निर्माण करने के छोटे छोटे जो दंडे सब होते हैं ना उसी को तुरी बेमा ये सब कहा जाता है। तो ये तुरी बेमा आदि जो है ना यह निमित्त कारण होता है वस्त्र का, यह समवायी कारण नहीं है। तो ये तुरी आदि क्यों नहीं समवायी कारण है? तो इसका ये जवाब है, क्योंकि तुरी आदि में समवाय संबंध से पट उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि हमने समवाय कारण के लिए शर्त रखी है कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो वह समवायी कारण है। तो पट जो है तंतुओं में ही समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, तुरी आदि में समवाय संबंध से उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए तुरी आदि समवाय कारण नहीं है, तंतु ही जो है पट का समवाय कारण है। इस तरह से यहाँ पर समवाय कारण का इन्होंने लक्षण भी दिया और उदाहरण भी दिया। आगे फिर प्रश्न करते हैं, ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधोपि पटस्य विद्यते। कहा कि पट जो वस्त्र है उसका संबंध तंतु के साथ भी है, और तुरी आदि, आदि से बेमा को ले लें, तुरी बेमा आदि का संबंध भी जो है पट के साथ है। फिर से मैं बता दूं कि वो दंडे में जो सूत लपेटा हुआ रहता है उसमें दो दंडे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो उसको उसी को तुरी और बेमा कहा जाता है। तो तंतु के साथ भी पट का संबंध होता है और तुरी आदि के साथ भी पट का संबंध होता है। तो फिर जो है तत्कथम तंतुषु एवं पट समवेतो जायते न तुरी आदिषु, तो जब पट का संबंध दोनों के साथ है, तंतु के साथ भी और तुरी आदि के साथ भी, तो पट तंतु में ही क्यों उत्पन्न होता है, तुरी आदि में क्यों नहीं उत्पन्न होता है, ये प्रश्न है। फिर से देखिए पंक्ति को, ननु तंतु संबंध इव, माने जैसा तंतु का संबंध है उसी तरह का तुरियादि संबंधोपि पटस्य विद्यते, तुरी आदि के साथ भी पट का संबंध होता है। तत्कथम तंतुषु एवं पटः समवेतो जायते, तो फिर तंतुओं में ही क्यों समवाय संबंध से पट उत्पन्न होता है, न तुरी आदिषु, तुरी आदि में क्यों नहीं उत्पन्न होता, तो इसका जवाब देते हैं, कहते हैं सत्यम, ताकि आप ये तो सही कह रहे हैं कि संबंध दोनों के साथ होता है, लेकिन संबंध जो है द्विविधा संबंध, संबंध दो प्रकार का है, संयोग समवायश्च इति, एक तो होगा संयोग संबंध, दूसरा होगा समवाय संबंध। तो इसमें तंतु के साथ जो संबंध होता है पट का, वो होता है समवाय संबंध, और तुरी आदि के साथ जो संबंध होता है वह होता है संयोग संबंध। तो लक्षण में मैंने ये कहा कि समवाय संबंध जिसमें हो कार्य कारण में, वहीं पर समवाय कारण होता है, तो वह तो तंतु के साथ होता है, तुरी आदि के साथ होता नहीं, इसीलिए तुरी आदि में पट उत्पन्न नहीं होता। यही कहते हैं कि सत्यम द्विविधा संबंध संयोग समवायश्च इति, माने दो प्रकार का संबंध है, संयोग संबंध और समवाय संबंध। तत्र अयुत सिद्धयोः संबंध समवाय, अब ये समवाय संबंध कहाँ होता है, तो जो अयुत सिद्ध होते हैं, देखिए संबंध होने के लिए दो पदार्थ होना जरूरी है, अकेले में संबंध नहीं हो सकता, तो जो दो पदार्थ हैं वो अगर अयुत सिद्ध पदार्थ हो तो उसमें समवाय संबंध होता है, और अन्ययोस्तु संयोग एवं, और जो युत सिद्ध होते हैं उसमें संयोग संबंध होता है। फिर एक नया शब्द आपने सुना अयुत सिद्ध और युत सिद्ध, ये क्या है, तो अलग अलग रहने पर भी जो सिद्ध रहे उसको कहते हैं युत सिद्ध, और जो अलग रहने पर असिद्ध हो जाए और मिलकर रहने पर सिद्ध हो उसको कहते हैं अयुत सिद्ध। तो अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः, जो अयुत सिद्ध है, जो दो पदार्थ अयुत सिद्ध हैं उनका संबंध समवाय होता है, अन्ययोस्तु संयोग एवं, और जो अन्य है, अन्य मतलब युत सिद्ध है, उसका संबंध संयोग संबंध होता है। अब देखिए कि वस्त्र और सूत जो है हमेशा एक साथ ही रहता है, अलग अलग नहीं रहता, इसलिए वो अयुत सिद्ध है, और तुरी बेमा जो है, वस्त्र यहाँ रहेगा, तुरी बेमा जो है ना कहीं पर रहेगा, और तुरी बेमा भी सिद्ध है और वस्त्र भी सिद्ध है, तो यह युत सिद्ध कहलाता है। तो तुरी बेमा जो है वह युत सिद्ध है, इसलिए उसमें संयोग संबंध माना जाता है, और वस्त्र और तंतु जो है वह अयुत सिद्ध है, इसलिए उसमें समवाय संबंध माना जाता है। तो समवाय संबंध होने के कारण ही जो है तंतु जो है समवाय कारण है, और संयोग संबंध होने के कारण तुरी आदि जो है वह निमित्त कारण है। तो आज का पाठ यहीं रखते हैं।